नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित करते हुए नागरिक केंद्रित प्रशासन पर दिया बल। संसद का बजट सत्र संपन्न, महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए संसद की जल्द बुलाई जाएगी बैठक। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं। और गिरते भूजल स्तर और लू की आशंका को लेकर राज्य सरकार की तैयारी शुरू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ऐसे प्रशासनिक मॉडल की आवश्यकता पर बल दिया है जो न केवल कुशल हो बल्कि नागरिक केंद्रित भी हो। उन्होंने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित करते हुए एक वीडियो संदेश में ये बात कही। श्री मोदी ने कहा कि सप्ताह का उद्देश्य सार्वजनिक सेवा को अधिक सक्षम, संवेदनशील और नागरिक केंद्रित बनाना है।
आज गवर्नेंस के जिस सिद्धांत को लेकर हम आगे बढ़ रहे हैं उसका मूल मंत्र है नागरिक देवो भव। इस मंत्र में समाहित भावना के साथ आज पब्लिक सर्विस को ज्यादा कैपेबल, नागरिकों के लिए ज्यादा सेंसिटिव बनाने पर फोकस किया जा रहा है। अब शासन को सिटीजन सेंट्रिक बनाकर एक नई पहचान दी जा रही है।
इधर बिहार में भी आज से कर्मयोगी साधना सप्ताह की शुरुआत हुई। सामान्य प्रशासन विभाग के अपर मुख्य सचिव डॉक्टर पी राजेंद्र ने सभी राज्य कर्मियों से इस सप्ताह कम से कम 4 घंटे कर्मयोगी पोर्टल पर नई तकनीकों को सीखने की अपील की।
2 अप्रैल से 8 अप्रैल के बीच साधना सप्ताह हमारे लिए सीखने, जुड़ने और बेहतर परिणाम देने का एक सुनहरा अवसर है। राज्य के सभी पदाधिकारी एवं कर्मियों से मेरा आग्रह है कि इस सप्ताह में कम से कम 4 घंटा इस प्लेटफॉर्म का उपयोग कर प्रशिक्षण प्राप्त करें, क्योंकि यह प्रयास अच्छा रहेगा हमारे लिए। यह समय है सीखने का, आगे बढ़ने का तथा क्षमता संवर्धन कर राज्य एवं देश की प्रगति में योगदान करने का।
क्षमता निर्माण आयोग अपने स्थापना दिवस और मिशन कर्मयोगी के 5 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में आज से 8 अप्रैल तक कर्मयोगी साधना सप्ताह मना रहा है। संसद का बजट सत्र आज संपन्न हो गया। यह सत्र 2 चरणों में आयोजित किया गया था। संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने राज्यसभा में बताया कि महिला आरक्षण से संबंधित महत्वपूर्ण विधेयक पर चर्चा के लिए संसद की कार्यवाही 2 से 3 सप्ताह बाद फिर शुरू होगी। उन्होंने कहा कि सरकार ने इस विषय पर 80% से अधिक दलों से परामर्श किया है। राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे ने इस संबंध में सर्वदलीय बैठक बुलाने की मांग की है, जिससे सभी दल अपने विचार रख सकें और प्रस्ताव को आगे बढ़ा सकें। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया है कि बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं है। आज लोकसभा में प्रश्नकाल के दौरान पूरक प्रश्नों का उत्तर देते हुए ऊर्जा मंत्री मनोहर लाल ने ये जानकारी दी। उन्होंने कहा कि यदि उपभोक्ता प्रीपेड स्मार्ट मीटर का विकल्प चुनते हैं तो इससे न केवल उपभोक्ताओं को बल्कि राज्यों और बिजली कंपनियों को भी लाभ होगा।
स्मार्ट मीटर के कारण से जो वहाँ गड़बड़े होती थी उसे रोकने के कारण से पहली बार गया है जिसमें 2600 करोड़ रुपए का लाभ हुआ है सभी 49 कंपनियों को मिला करके। हम तो गाइडलाइन देते हैं, राज्य की सरकारों का काम है, लेकिन राज्य की सरकारें इसको लगाएं, ये हमारा आग्रह भी रहता है। और उस आग्रह के कारण से इन कंपनियों का हमको भी चिंता है ताकि सारे देश में बिजली ठीक से बने और ज्यादा प्लांट जनरेशन हो और उनको पेमेंट कर सके, घाटा खत्म हो।
दरभंगा के सांसद गोपाल जी ठाकुर ने आज लोकसभा में शून्यकाल के दौरान पशुपतिनाथ धाम, बैद्यनाथ धाम हाईस्पीड कॉरिडोर का निर्माण भेजा, कंडोल, कुशेश्वर स्थान और खगड़िया होते हुए कराए जाने की मांग की। उन्होंने कहा कि इससे यह कॉरिडोर क्षेत्रीय आर्थिक विकास की दिशा में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
आदरणीय श्री नितिन गडकरी सा एगो महत्वपूर्ण प्रस्तावित सड़क परियोजना पशुपतिनाथ धाम बैजनाथ धाम हाई स्पीड कॉरिडोर भाया भेजा गंडोल कुशेश्वर स्थान खगड़िया होइत बैजनाथ धाम बनेबाक आग्रह करै छी। महोदय, एहि प्रस्तावित हाई स्पीड कॉरिडोर सँ बिहार के अनेको उपेक्षित एवं पिछड़ल क्षेत्र सीधा लाभ प्राप्त होत और विशेष रूप से कुशेश्वर स्थान जो उत्तर बिहार के प्रमुख धार्मिक तीर्थ स्थल है, एहि कॉरिडोर सँ जोड़ला सँ श्रद्धालु के काफी सुविधा भेटत।
केंद्र सरकार ने पेट्रोकेमिकल उत्पादों पर 30 जून तक सीमा शुल्क में पूरी तरह छूट देने का फैसला किया है। आज नई दिल्ली में अंतर मंत्रालय ब्रीफिंग में केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड के सदस्य संजय मंगल ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि इस छूट से पेट्रोकेमिकल, प्लास्टिक, वस्त्र और फार्मास्यूटिकल्स जैसे उत्पादों पर निर्भर कई क्षेत्रों को लाभ होगा। संवाददाता सम्मेलन में पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने कहा कि देश में एलपीजी की आपूर्ति पूरी तरह स्थिर बनी हुई है। उन्होंने कहा कि देश में कच्चे तेल की उपलब्धता सामान्य है और रिफाइनरियां पूरी क्षमता से काम कर रही हैं।
क्रूड सप्लाईज अगले 60 दिन के लिए टाइड अप है। हमारी क्रूड इन्वेंट्रीज आर सफिशिएंट। रिफाइनरीज मैक्सिमम कैपेसिटी पर ऑपरेट कर रही हैं। मैं ये बात क्लियर कर देना चाहती हूँ कि सल्फर की कोई शॉर्टेज नहीं है। हमारे रिटेल आउटलेट्स नॉर्मल ऑपरेट कर रहे हैं। इंटरनेशनल वॉलेटिलिटी के बावजूद भी पंप के प्राइजेज में कोई इंक्रीज नहीं किया गया है। भारत सरकार ने प्राइजेज को स्टेबल रखने के लिए एक्साइज ड्यूटी में रिडक्शन किया है।
प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_ पटना को फॉलो कर सकते हैं। उप मुख्यमंत्री सह राजस्व और भूमि सुधार मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि जिस सरकारी भूमि पर अवैध कब्जा है उसकी जांच कर कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। आज छपरा में श्री सिन्हा भूमि सुधार जन कल्याण संवाद कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे।
सरकारी जमीन का फर्जी दस्तावेज बना करके जो इस तरह का बेचता है उस पर सीधे FIR की व्यवस्था बनाइए। ऐसे सरकारी जमीन के लिए कोई आकर के सरकार के हित में आवेदन दे उसको हम लोग प्रशस्ति पत्र भी देंगे और वो हमारा बिहारी योद्धा होगा उसको सम्मान भी देंगे।
वित्त वर्ष 2025-26 में वाणिज्य कर विभाग द्वारा 43,324 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया। इसमें GST और VAT सहित अन्य कर शामिल हैं। विभागीय मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने आज पटना में संवाददाता सम्मेलन में ये जानकारी दी। संवाददाताओं से बातचीत में वाणिज्य कर विभाग के प्रधान सचिव संजय कुमार सिंह ने बताया कि विभाग द्वारा GST मद में 32,801 करोड़ रुपए का राजस्व संग्रह किया गया जो पिछले वर्ष की तुलना में 11% अधिक है। उन्होंने बताया कि GST संग्रह में बिहार ने राष्ट्रीय औसत की तुलना में 3% से अधिक की वृद्धि दर्ज की है।
वाणिज्य कर विभाग ने कुल 43,324 करोड़ की राजस्व की वसूली की है। पिछले वर्ष 41,623 करोड़ था। इस प्रकार यह ग्रोथ 4.09% हुआ। GST में बिहार ने बहुत ही उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है और बहुत ही अच्छा टैक्स कलेक्शन किया है। हम लोगों ने जो टोटल टैक्स कलेक्ट किया है वो है 32,801 करोड़ इस वित्तीय वर्ष में और यह पिछले वित्तीय वर्ष के मुकाबले 11.67% ज्यादा है।
राज्य सरकार ने गिरते भू जल स्तर और लू की आशंका को लेकर संबंधित विभागों को तैयारी शुरू करने का निर्देश दिया है। आपदा प्रबंधन विभाग के संयुक्त सचिव मोहम्मद नदीमुल कफ्फार सिद्दीकी की अध्यक्षता में आयोजित बैठक में इस संबंध में प्रभावी उपाय सुनिश्चित करने के अधिकारियों को निर्देश दिए गए। संयुक्त सचिव ने जल संरक्षण के लिए तत्काल ठोस कदम उठाने और जागरूकता अभियान चलाने को कहा। साथ ही उन्होंने लू से बचाव के लिए व्यापक स्तर पर तैयारी सुनिश्चित करने के निर्देश दिए। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष संजय सरावगी ने राजद के कार्यकारी अध्यक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव के बिहार को पिछड़ा राज्य बताए जाने वाले बयान की तीखी आलोचना की है। उन्होंने कहा कि 2005 से पहले बिहार पिछड़ा था लेकिन उसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य लगातार विकास की राह पर आगे बढ़ रहा है।
निश्चित रूप से हम आपके मान में बिहार का अपमान कर रहे हैं, बिहारी का अपमान कर रहे हैं दूसरे राज्यों में जाकर। एक तरफ राहुल गांधी देश का अपमान कर रहे हैं और ये राज्य का अपमान कर रहे हैं।
इधर लोजपा रामविलास के अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी तेजस्वी प्रसाद यादव की आलोचना करते हुए कहा कि वे चुनावी लाभ के लिए अपने गृह राज्य को बदनाम कर रहे हैं।
राज्य में जाकर नेता प्रतिपक्ष चुनावी लाभ के लिए अपने ही गृह राज्य को बदनाम करने का काम कर रहे हैं। बिहार को गरीब बनाने वाला और बनाए रखने वाले की भूमिका में कौन लोग थे, ये जवाब भी तेजस्वी जी को देना चाहिए था। वहाँ पे बताना चाहिए था कि मेरी पार्टी, मेरा परिवार जिम्मेदार है बिहार को पिछड़ा बनाने के लिए।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जेड प्लस सुरक्षा दिए जाने के कारणों पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी प्रसाद यादव ने कड़ी आपत्ति जताई है। श्री यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि गृह विभाग ने इस संबंध में जो आदेश जारी किया है उसकी भाषा आपत्तिजनक है। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अभी पद पर बने हुए हैं, लेकिन इस पत्र में उनके इस्तीफे की बात कहकर जेड प्लस श्रेणी की सुरक्षा देने की बात कही गई है। प्रदेश में मौसम शुष्क बना हुआ है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान पछुआ हवा का प्रभाव बना रहा। अधिकतम और न्यूनतम तापमान में कोई खास परिवर्तन नहीं दर्ज किया गया। मौसम पूर्वानुमान में कहा गया कि अगले 3 से 4 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में 1 से 3 डिग्री सेल्सियस की क्रमिक वृद्धि होगी। वहीं न्यूनतम तापमान में कोई विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। इधर पिछले 24 घंटों के दौरान 37.7 डिग्री सेल्सियस अधिकतम तापमान के साथ भभुआ राज्य का सबसे गर्म स्थान रहा। मोतिहारी के शौर्य स्तंभ पार्क में 15 अप्रैल से रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन द्वारा अत्याधुनिक सैन्य उपकरणों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। स्थानीय सांसद राधा मोहन सिंह ने ये जानकारी दी। उन्होंने स्थल निरीक्षण कर तैयारियों की भी समीक्षा की। श्री सिंह ने बताया कि यह प्रदर्शनी 18 अप्रैल तक चलेगी। देश के विभिन्न हिस्सों में आज हनुमान जन्मोत्सव पूरी श्रद्धा के साथ मनाया जा रहा है। इस अवसर पर पटना जंक्शन स्थित हनुमान मंदिर में दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। हमारे संवाददाताओं ने बताया कि विभिन्न मंदिरों में पूजा अर्चना के लिए श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखी गयी। निगरानी जांच ब्यूरो की टीम ने मुंगेर प्रमंडलीय आयुक्त कार्यालय के पेशकार मुकेश कुमार को 1,70,000 रूपये रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार कर्मी जमीन से जुड़े एक मामले में शिकायतकर्ता से घूस ले रहा था। अररिया में पीएम सूर्यकर मुफ्त बिजली योजना के तहत 13 गांवों का चयन किया गया है। जिलाधिकारी विनोद तोहन ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि इन गांवों में सोलर योजनाओं के प्रचार प्रसार में तेजी लाई जाए। राष्ट्रीय ऑटिज्म दिवस पर सहरसा जिले के कोसी दिशा केंद्र पटुआहा के प्रांगण में जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। सुलभ इंटरनेशनल के संस्थापक डॉक्टर विंदेश्वरी पाठक की जयंती पर आज पटना में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस अवसर पर उनके व्यक्तित्व और कृतित्व पर चर्चा की गई। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कर्मयोगी साधना सप्ताह को संबोधित करते हुए नागरिक केंद्रित प्रशासन पर दिया बल। संसद का बजट सत्र संपन्न, महिला आरक्षण विधेयक पर चर्चा के लिए संसद की जल्द बुलाई जाएगी बैठक। केंद्र सरकार ने स्पष्ट किया, बिजली उपभोक्ताओं के लिए प्रीपेड स्मार्ट मीटर अनिवार्य नहीं। और गिरते भूजल स्तर और लू की आशंका को लेकर राज्य सरकार की तैयारी शुरू। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।